किसके साथ थी, पांच इंद्रियों संपन्न होते हैं। अंतिम नियम था ईश्वर परिधान, परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर में विश्वास, आस्था, निर्भरता। कल चर्चा चल रही थी शौच की। प्रथम नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम आपसे अर्ज की जा रही थी, बाह्य शौच बहुत कम महत्व रखता है, भीतरी शौच आंतरिक पवित्रता अति महत्वपूर्ण है। ये कैसे की जाए? मात्र सुन लेने से की है, भीतर की पवित्रता हमें करनी है, करनी चाहिए। जब तक पता न हो किस प्रकार से की जाती है तो सुनी सुनाई बात से कोई लाभ नहीं होने वाला। आज चर्चा शुरू करते हैं, आंतरिक शुद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। अब शरीर को देखो, सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, नासिका के दोनों छिद्र बाहर हैं, मुख बाहर है। सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इनका मुख बहिर्मुखी अर्थात इनका मुख बाहर की ओर है। लेकिन आंतरिक शुद्धि तो अंतर्मुखी होने से होती है। तो एक शब्द और अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी समझने में कोई कठिनाई नहीं, हम सब समझते हैं। देखिए सचिनों, सब आपके काम की बातें हैं, प्रत्येक साधक को इनको जानना ही है। इन्हें जाने बिना फिर इनका पालन किए बिना साधना सफल नहीं हो पाएगी, अधूरी रहेगी, आप सदा अधूरापन महसूस करते रहोगे। यदि चाहते हो कि आपकी साधना सफल हो तो फिर जो आज से प्रसंग शुरू किया जा रहा है उस प्रसंग का अक्षरशः आपको पालन करना होगा, नहीं तो मात्र जप पर ही टिके रहोगी, उपलब्धि बहुत कम होगी। इससे उपलब्धियां बहुत तेज हो जाती हैं, बहुत तीव्र हो जाती हैं। तो इंद्रियां सबकी सब बहिर्मुखी हैं। संत महात्मा कहते हैं अंतर्मुखी होजिए, शास्त्र कहता है अंतर्मुख होजिए। क्या अर्थ है इसका? इन इंद्रियों को अंदर की ओर किस प्रकार से ओढ़ना है, इसी क्रिया को दिव्य सचिन ध्यान कहा जाता है। सुनीता ध्यान से सुन देवी, इधर उधर नहीं देखो, इस विषय इस प्रकार का नहीं है कि बहुत एकाग्रचित होकर सुनने की बात और फिर उतने ही एकाग्रचित होकर करने की चीज, अन्यथा व्यक्ति सिर्फ बाजा ढोलक बजाने तक ही रह जाता है, कुछ पाता नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं होता। आज की जो भी चर्चा आप सुन रहे हो इससे वास्तविक उपलब्धि आपके जीवन में होगी जो अभी तक नहीं हुई है। क्यों? आपने कभी इस विधि को ठीक ढंग से सही ढंग से किया ही नहीं है। कभी हरिद्वार गए, साधना सत्संग में गए तो ध्यान में बैठ गए, बस इसके अतिरिक्त नियम पूर्वक बहुत कम साधक हैं गिने चुने जिन्होंने ध्यान को अपनाया है अपनी साधना में, जिन्होंने अपनाया है उन्हें लाभ भी हुआ है। पर जिन्होंने नहीं अपनाया वह मात्र ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा दौड़ता रहे, जिसे लोकल रेस कहा जाता है, वह आगे एक पग भी नहीं चल पाता। यही हालत हम सबकी है लगभग। हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन लोकल एक ही जगह पर जंप कर रहे हैं, और फिर एक ही जगह पर जंप करने से आदमी वहीं रहता है, कहीं एक पग भी आगे नहीं जाता। आज जो ध्यान की विधि, अंतर्मुखी होने की विधि जो आपको बताई जा रही है, इससे आप भागोगे, इससे आप मंजिल की ओर बढ़ोगे। आगे बढ़ते जाओगे, खूब आगे बढ़ते जाओगे, जितना करोगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपको संतोष मिलेगा। इस सोच के बाद स्वामी जी महाराज ने रखा संतोष। दूसरा नियम महर्षि पिताजी ने लिखा संतोष। ये संतोष जीवन में कब आएगा? जब आपकी साधना पूर्ण होगी। इससे पहले आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा, अभाव रहेगा। सब कुछ तो है, पता नहीं किस चीज की कमी है, इसी चीज की कमी है। इस चीज की पूर्ति इस जीवन में होनी चाहिए, तब जाके साधना संपन्न होती है, तब जाके परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, आत्म संतोष जिसे कहा जाता है वह मिलता है, नहीं तो ऐसे ही काम चलता रहता है। अंतर्मुखी करना है, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना है। आंख यदि बाहर देखती है सब देखो मेरी ओर, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को समझ सको, फिर उसके बाद इन्हें करना होगा। आज समय लगा, आज ही से शुरू करेंगे, नहीं तो कल से शुरू करेंगे। आंख खुली है, आंख बाहर देख रही है, आपने इसको बंद कर दिया। आप शब्द स्वामी जी महाराज की याद करो, जिस वक्त स्वामी जी महाराज दीक्षा देते हैं क्या फरमाते हैं, कहते हैं आंख बंद करके इस त्रिकुटी स्थान को देखो। ये बाह्य चिन्ह है, जो कुछ देखना है, जो कुछ दिखाई देगा इसके पीछे दिखाई देगा। बंद आंख देखना, खुली आंख देखना तो आंख बहिर्मुखी, बंद आंख देखना तो आंख अंतर्मुखी हो। सिंपल। मीता समझ आ गई दीदी? कोई मुश्किल नहीं? क्या किया है? आंख खुली बाहर देख रही है, संसार है बाहर, आंख संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकती। संसार देखती है, देखती ही रहती है, कभी संतुष्टि नहीं होती, सदा अतिरिक्त और देखने को मन करता है। कभी अच्छा भी दिखाई देता है तो अक्सर बुरा ही दिखाई देता है, बुरा ही बुरा देखने का शौक है, इस गंदी चीजें देखने का शौक है। इस हमने सुधाराया ही इसको इस प्रकार से है, बाहर देख रही है आंख तो बहिर्मुखी है। आपने आंख बंद कर ली, आंख बंद करके अपनी दृष्टि को यहां टिका लिया, सारे मस्तक पर टिका लिया, ललाट पर टिका लिया, या त्रिकुट स्थान इस जगह पर बिंदी वाली जगह पर टिका लिया। बाहर चिन्ह है, स्वामी जी कहते हैं अंदर का कैसे बताना, तो बाह्य चिन्ह रखा कि आप इस जगह को देखो। अब जो कुछ आप भीतर जाते जाओगे, जैसे जैसे आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होती जाएगी, अंदर के भेद खुलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो इसके पीछे है वह दिखाई देना शुरू होगा। ऐसे नहीं, लंबा काम है, धैर्य रखना, निराश नहीं होना। अभी तो आज यात्रा शुरू करने जा रहे हो आप, तो अभी तो आज चलना शुरू करोगे, मंजिल तो बहुत दूर है ना, अतएव थकान भी होगी, विघ्न बाधाएं भी आएंगी, सब कुछ होगा, इनसे निराश नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है। एक ही जगह पर टिके रहोगे तो टिके रहोगे, कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला, आप ही को बढ़ना है, चलना भी आपको है, पहुंचना आपको है, तो फिर चलना भी आपको है। गुरु क्या करता है, स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, जैसे एक मार्गदर्शक जिसने ये रास्ता चला हुआ है, तय किया हुआ है, वह आपको रास्ता दिखाता है, बच्चों इस प्रकार से चलोगे तो आगे बढ़ोगे, अन्यथा नहीं। तो एक चीज से सब कुछ पता लग गया कि हमने अंतर्मुखी कैसे होना है। कान भी बाहर खुल रहे हैं, बड़ी कठिन इंद्रिय है, आंख तो बंद कर ली, इसका क्या किया जाए? बहुत से स्टूडेंट्स मेडिटेशन के, ध्यान के स्टूडेंट्स कान में रुई रखते हैं, कान को बंद करने के साधन है उनके पास। स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, स्वामी जी महाराज ने कहा इससे मन को मोड़िएगा, मन जहां होता है वहीं आप होते हो। आप कई दफा अपने विद्यार्थी जब थे, समय याद करो, कई दफा टीचर कुछ बताता है तो आप सुनते नहीं हो, टीचर पकड़ लेता है कि ये सुन नहीं रही, ये कहीं और गई हुई है, तो पूछते हैं
मैंने सिमरन क्या बोला, क्या कहा आपको? तो सिमरन कहती है,
क्षमा करें सर, मैंने सुना नहीं।
क्या हुआ? कान तो बंद नहीं किए हुए, क्या हुआ है? मानो जिस माध्यम से कान सुनता है, जिसे मन कहा जाता है, वह वहां नहीं है। कान तो वही है, लेकिन फिर भी आप सुन नहीं रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं यही टेक्निक आपको ध्यान में प्रयोग करनी है। एक कान बंद नहीं करने, आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि कान होते हुए भी आप सुनो ना। इस मन को जिसके माध्यम से सुनता है, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जिसके माध्यम से ये सुनता है, उसको विदड्रॉ करो वहां से, तो फिर काम बन जाएगा, तो ये इंद्रिय भी अंतर्मुखी हो जाएगी। इस प्रकार से देवियों सज्जनों, इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, इंटरनलाइजेशन, इनको कहेंगे इंटरनलाइज करना है इनको, तो फिर आपको जो भीतर है वह दिखाई देगा, बाहर दिखाई देता है बाहर का संसार। और संत महात्मा कहते हैं अरे बाहर कुछ नहीं है, बाहर क्या देख रहे हो, भीतर जाओ, जितना भीतर जाओगे उतना संसार के भेद खुलेंगे, उतना संसार भीतर का संसार दिखाई देगा, भीतर परमात्मा का संसार है। यहां आदमी का रचा हुआ संसार है, भीतर परमात्मा का संसार है, वह अपने रंग दिखाता है भीतर। कब? जब भीतर मुड़ोगे। कब? जब दृष्टि सारी की सारी की सारी इंद्रियां जब भीतर की ओर जाएंगी, तो सब कुछ तब दिखाई देगा। आज से शुरू करते हैं सत्संग, कैसे करना है ये सिलसिला। स्वामी जी महाराज ने क्या बताया था हमें, जिस वक्त दीक्षा दी थी उस वक्त कहा था, परमात्मा को अपने अंग संग मान के मैं आपको वहां से शुरू कर रहा हूं। आप विद्यार्थी हो, आप ऑलरेडी इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर चुके हुए हो, सो आगे चलना है। आप शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद दिलानी है कुछ एक बातों की। परमात्मा को अपने अंग संग मान के मत भूलिएगा इस सब्जेक्ट को, इस बात को कभी नहीं भूलना। जब से आपने ये मानना शुरू कर दिया है कि हम अकेले हैं, परमात्मा बेचारा निस्सहाय हो जाता है, मुझे छोड़ दिया है इन्होंने। कभी अपने आप को अकेला नहीं मानना। हमारी साधना का शुभ आरंभ, हमारे सब कुछ का शुभ आरंभ यहीं से होता है। परमात्मा हमारे अंग संग है। अंग संग का अर्थ भीतर है, बाहर है, इधर है, इधर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, इसको कहा जाएगा परमात्मा हमारे अंग संग है। रोम रोम में, रोम रोम में बसने वाले राम, बाहर भी व्याप्त, भीतर भी व्याप्त। परमात्मा को अपने अंग संग मान के सबसे पहले झुक के करना है प्रणाम, और फिर उनके आशीर्वाद लेके सीधे होकर बैठ जाना है। एक एक अंग जो स्वामी जी महाराज ने समझाया है अति महत्वपूर्ण है। पहली बात, परमात्मा को अपने अंग संग मानना है, उसके बाद उन्हें झुक के प्रणाम करना है। झुकना शब्द स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत कुछ दे जाता है। बिना झुके किसको कुछ नहीं मिलता, न गुरु से मिलता है, न परमात्मा से मिलता है। किसी संत महात्मा से बिना झुके कुछ नहीं मिलता। इससे क्या होगा? झुकना आपको ग्रहणशील बनाता है। झुकने से आप चीजों को ग्रहण कर सकते हो, और कुछ नहीं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई बाहर की व्यायाम आपसे नहीं करवाई जाए। आपको कहा जा रहा है झुकिएगा, तो मात्र शरीर से नहीं झुकना, शरीर से तो झुकने की सीमा है, कितना झुक सकोगे आप, लेकिन मन से तो झुकने की कोई सीमा नहीं, जितना मर्जी झुकिएगा। मन से झुकना सीखे साधक। स्वामी जी महाराज झुकने से क्या सिखाना चाहते हैं? आप भीतर से झुकना सीखिएगा। बाहर से तो आप झुके, लेकिन अंदर तो अभिमान खड़ा है, अकड़ा हुआ है, इसको कौन झुकाएगा? स्वामी जी महाराज इसकी बात कर रहे हैं, इसको झुकाइएगा, इसको झुकाना सीखिएगा। आज परमात्मा के आगे झुक रहे हो, नाम की उपासना जारी रखोगे, साधना जारी रखोगे, तो फिर परमात्मा के ये रूप जो बैठे हैं, इनके आगे भी झुकना सीख जाओगे तो जिंदगी मौज हो जाएगी, तो जिंदगी अनंत में हो जाएगी, जिंदगी शांत जीने योग्य जिंदगी हो जाएगी। क्या कहा स्वामी जी महाराज ने, परमात्मा को अपने अंग संग मान के झुक के करना है प्रणाम। कैसी झुकना, यहां पर जगह कम है, अपनी गर्दन झुका के कर लेना प्रणाम। घरों में जाके उल्टबाजी लगा के करना प्रणाम। फिजिकली जितना झुक सकते हो, उल्टबाजी लगाने का अर्थ फिजिकली शरीर से जितना झुक सकते हो उतना झुको। धीरे धीरे भीतर से झुकने की भावना, भीतर से विनम्रता अपने आप आ जाएगी। विनम्रता निर्अभिमानता का चिन्ह है। ये जो अंदर अकड़ रहता है उसके ढीले होने का चिन्ह है। तभी आप ढीले होगे, तभी विनम्रता आएगी, तभी अधिक ग्रहणशील हो पाओगे। तो इस प्रकार से झुक के करना है प्रणाम। ये पिछली जगह आपकी उठनी चाहिए, जैसे बच्चे उल्टबाजी लगाते हैं ऐसी प्रणाम करके तो सब सीधे होके बैठ जाएंगे। आज देख लो, कल शुरू करेंगे। सीधे होके कैसे बैठना है, स्वामी जी महाराज समझाते हैं। जो बालक लोग, गौरव बेटा, आपकी आयु के जो बच्चे, जो युवक पद्मासन पर बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते, हम बुजुर्ग हो गए हैं और भी बहुत हठ नहीं करना। यह हठ का मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग हठ योग नहीं है, सहज योग है। हमारा मार्ग सहज का मार्ग है। सीधे चौकड़ी लगा के बैठिएगा, सुखासन से कहा जाता है, क्रॉसलेट। ऐसे बैठ के, अभी ऐसे बैठने का भी अभ्यास नहीं है। ध्यान के लिए मुख्य बातें याद रखो, दो बातें तो हर साधक को कंठस्थ होनी चाहिए, जब कैसे करना है और ध्यान में कैसे बैठना है। दोनों में अंतर स्वामी जी महाराज यही कहते हैं ना, ध्यान हमेशा बैठ के, जब आप चलते फिरते भी करते हो, कामकाज करते भी करते हो, लेट के भी करते हो, इत्यादि इत्यादि, खुली आंख करो, बंद आंख करो, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान हमेशा बैठ के, चार बातें स्वामी जी महाराज पहले दिन ही समझाते हैं। ध्यान हमेशा बैठ के, आंख बंद करके, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और बिना हिले जुले। चार बातें आज आपको कही स्वामी जी महाराज ने, कैसे ध्यान के लिए बैठना है। हमेशा बैठ के, आंख बंद करके, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और बिना हिले जुले। क्योंकि बिना हिले जुले, इसलिए आरंभ में ध्यान की अवधि 10 मिनट 15 मिनट रखनी। अभ्यास हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, इतने से भी काम नहीं चलेगा, अब चस्का लग जाएगा, अब आपको कुछ आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। परमात्मा यहां पर आपको आनंद की झलक दिखानी शुरू करेगा, ध्यान अवस्था की झलक। इससे क्या मिलेगा, चेहरे पर न चाहते हुए मुस्कान रहेगी, आप रोक नहीं सकोगे। ये सब ध्यान के बाद ये सब चीजें आती हैं। तब ध्यान कई बार लगाने को मन करेगा, लगाइए, जितना लगाओगे उतना भीतर जाओगे। ये जब कहा जाता है आप त्रिकाल संध्या कीजिए, तीन बार ध्यान के लिए बैठिए, घंटा सुबह बैठिए, घंटा शाम को बैठिए, दोपहर को बैठिए, दिन में अनेक बार बैठिए, ये भीतर से सब चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। इसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप होने लग जाती है। जितना अधिक समय दोगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही आप भीतर की ओर प्रवेश करोगे, भीतर की ओर मुड़ोगे आप, और गहरे, कहते हैं गो डीप, वेयर डीप, कहां डीप जाना है, सुनते ही है ना, अभी तक सुना ही है ये सब कुछ, शास्त्र क्या कहता है, अरे गो डीप, भीतर जाओ और जाओ भीतर और जाओ भीतर, कहां जाना है भीतर। ये सब क्रियाएं जो आप जिससे कही जा रही हैं, ये सब और डीप जाने के लिए, और डीप जाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप ही रास्ते खुलते जाते हैं। बशर्ते कि आपने आरंभ शुभ आरंभ कर लिया है, आपने शुरुआत कर दी है, तो आज तो समय हो गया है यही समाप्त करने की। इजाजत दीजिए, कल इसे और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।